प्रभु की सहायता से 7 अध्याय 1 पद से लेकर के 14 पद तक आज विचार करेंगे। जो आज का मुख्य विषय है वो ये है कि स्वर्गीय बुद्धि परमेश्वर से प्राप्त होती है। 6 अध्याय तक सुलेमान को हम पृथ्वी की बुद्धि को प्राप्त करके उस खोज को देखते हैं कि उसने जो बुद्धि प्राप्त करी वो पृथ्वी की सूर्य के नीचे अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से सब कुछ उसने प्राप्त करा। और उसने सोचा कि इसी सारी चीज़ में संतुष्टि, यहाँ तक कि उसने अपने विवाह के लिए भी लगभग 700 उसकी रानियाँ थीं और 300 रखेल थी, उसने सोचा ये सारी ये चीज़ें भी उसको संतुष्ट कर सकेंगी। जबकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से एक नियम तय ठहराया था, एक पुरुष एक स्त्री एक पुरुष, परंतु सुलेमान ने उस नियम को भी तोड़ा और सोचा इन सब कुछ से मुझे सब प्राप्त होगा, लेकिन उसको सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ और वो इस बात पर पहुँचता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। इसीलिए जब वो अपना लिखता है, आरंभ करता है, तो आरंभ से ही इस बात पर विचार करते हुए कहता है। और हमने पिछली बार देखा था सूर्य के नीचे जो शब्द है वो करीब 30 बार आया है और जो व्यर्थ ही व्यर्थ है करीब 37 बार आया है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। और ये देखा, लेकिन 7 अध्याय में जैसे हम आते हैं 7 अध्याय में अब कहानी बदल जाती है। अब 7 अध्याय में 6 अध्याय तक सुलेमान अपने प्रयास से इस पृथ्वी की बुद्धि से सब कुछ को प्राप्त करना चाह रहा है, संतुष्टि प्राप्त करना चाह रहा है, महिमा प्राप्त करना चाह रहा है, उसने कुछ कुछ प्राप्त किया, लेकिन सबसे बढ़ करके उसको इन सारी चीज़ों में संतुष्टि नहीं मिली। अर्थात वो बुद्धि जो पृथ्वी की बुद्धि थी वो व्यर्थ ठहरी है, व्यर्थ ठहरी है। और वो इस स्थान पर पहुँचता है कि पृथ्वी की बुद्धि व्यर्थ है और वो मनुष्य को सब कुछ नहीं कर सकती, और सबसे बढ़ करके वो पृथ्वी की बुद्धि जो है मनुष्य उसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि जो पृथ्वी की बुद्धि है उसके मनुष्य सोचता है और उस सोच करके अपने प्रयास करता है, चाहे उसके धर्म कर्म हो, चाहे उसकी दूसरी क्रिया हो, चाहे भले काम हो, चाहे बहुत और अन्य बातें हों, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। पर जब 7वें अध्याय में आता है ऐसा लगता है कि सुलेमान चौंक गया और चौंक कर अब पुनः वो परमेश्वर के पास वापस आ रहा है। अभी तक परमेश्वर से वो थोड़ा सा दूर हो गया है, परमेश्वर से थोड़ा दूर। बार बार हम देखते हैं कि उसके अंतिम समय में सुलेमान भटक गया था या बैकस्लाइड हो गया था, हम बोलते हैं इंग्लिश में जो शब्द है, वो परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गया था। और तब दूर होने के बाद उसने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन 7वें अध्याय में फिर वापस आता है, जैसे उड़ाऊ पुत्र। एक दिन उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया, सब कुछ उसने लिया लेके चला गया, लेकिन जब वो अपने होश में आया और उसने कहा रे जो मैं कर रहा हूँ ठीक नहीं है, और तब वो वापस होश में आता है तो वापस आता है और पिता से क्षमा मांगता है, पर पिता उसको स्वीकार करता है। सो कुछ कुछ चित्रण वही है, यदि पूरा विस्तार के साथ नहीं, लेकिन ज़रूर अब सुलेमान ये सोच रहा है कि मैं परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता और वो बुद्धि पृथ्वी की बुद्धि बेकार है, और इसलिए वो परमेश्वर के पास वापस लौट रहा है। और अब जो वो लिख रहा है वो उस चीज़ को लिख रहा है जो परमेश्वर में प्राप्त होती है। तो 7वें अध्याय में विशेष रीति से हम सुलेमान के द्वारा उन बातों को देख रहे हैं जो परमेश्वर से प्राप्त होती है, परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है और उससे प्राप्त होती है, और उसका क्या प्रतिफल होता है क्या। तब जब 8वें अध्याय में आएंगे फिर 9वें अध्याय में थोड़ा सा उसको भटका हुआ देखते हैं, लेकिन उसके बाद वापस पूरी रीति से आता है, तब अंतिम लगता है। तो उसके जीवन में एक संघर्ष है, उसके जीवन में संघर्ष है। चाहे एक विश्वासी कितने ही बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, उसको इस पृथ्वी पर रह करके अपने आत्मिक जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे संघर्ष के समय में अगर वो परमेश्वर की निकटता में रहे, परमेश्वर के वचन को सही रीति से ले, तो वो स्थिर रहता है, खड़ा रहता है। अगर वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना दे, परमेश्वर की संगति में ना रहे, परमेश्वर के लोगों की संगति में ना रहे, तो वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाएगा और उसके निर्णय वो निर्णय होंगे जो उसको और नरक में ले जालेंगे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो 7वें अध्याय में अधिकतर वो मुहावरे के रूप में बात करता है, मुहावरे कह दीजिए या कहावत कह दीजिए, प्रोवर्ब्स कह दीजिए, प्रोवर्ब्स जो नीति वचन है, नीति वचन है, उस तरह से वो बात करता है। अर्थात दो बातों को लेता है वो, या एक किसी व्यक्ति को ले रहा है और दो चीज़ों को प्रकट करता है। इस या तो ये है या ये है, इसका प्रतिफल ये होता है, इसका प्रतिफल ये होता है, अब चुनना आपको है। और बार 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 करीब 14 पद में, इन 14 पद में 7 चीज़ें के बारे में वर्णन कर रहा है, 7 बातों के बारे में वर्णन कर रहा है। और इन 14 पदों में वो करीब 8 बार एक शब्द का इस्तेमाल करता है। इंग्लिश में जो शब्द आया वो बेटर शब्द आया है, लेकिन हिंदी में शब्द उत्तम शब्द है, अच्छा शब्द है, सबसे अच्छा शब्द है, ये शब्द है। 8 बार ये शब्द आए, उत्तम, अच्छा, सबसे अच्छा, ये शब्द। लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है बेटर, जो 8 बार आया है। सो हम इस बात को देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं नीति वचन को या किसी उदाहरण के रूप में, तो किस रीति से सुलेमान पहले भी समझा चुका है। 2-1 पदों को देखेंगे नीति वचन में। नीति वचन में 13 अध्याय उसका पहला पद, उसको समझने के लिए जो हम आगे सबोपदेश को समझना चाह रहे हैं कि किस रीति से सुलेमान का लिखने का तरीका क्या है। 13 अध्याय उसका पहला पद, बुद्धिमान पुत्र अपने पिता की शिक्षा को ग्रहण करता है, परंतु ठट्टा करने वाला पुत्र डांट डपट पर भी ध्यान नहीं देता। ये एक पुत्र के बारे में बात कर रहा है और 2 चीज़ बता रहा है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। सकारात्मक ये है कि वो शिक्षा को ग्रहण करता है, जो पिता उसको शिक्षा दे रहा है उसको सुनता है, मानता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, वो ये है कि परंतु अगर वो पुत्र ठट्टा करने वाला है तो वो किसी तरह से डांट टपट पर भी ध्यान नहीं देगा। उसके सामने कोई पिता की वैल्यू नहीं है, उसके सामने पिता की कोई कीमत नहीं है, पिता की बात पर वो कोई ध्यान नहीं देता। तो इस तरह से नीति वचन में भी सुलेमान इसी तरह से लिख रहा है। एक दो पद और हम देखेंगे, 14 अध्याय का 13 पद, नीति वचन 14 अध्याय उसका 13 पद, हंसी में हृदय दुखी हो सकता है और आनंद का परिणाम भी शोक हो सकता है। अब क्या कह रहा है वो, हंसी में हृदय दुखी हो सकता है, हंस तो रहे हैं पर अंदर क्या है, दुख है। बाहर से तो हंस रहे हैं, 2 रूप दिखाई दे रहे हैं, हंसना अलग रूप है, अंदर छुपा हुआ अलग रूप है, वो क्या है, दुखी होने का रूप। और आनंद का परिणाम भी शोक हो सकता है, आनंद भी है लेकिन अंदर कोई परिणाम ऐसी कोई ऐसी चीज हो गई जो शोक है, शायद कोई घटना घट गई, शायद कोई हानि हो गई, शायद कोई प्रिय की मृत्यु हो गई, मिल रहे हैं लोगों से लेकिन आनंद के साथ बात तो कुछ ऐसे कर लेकिन अंदर कोई दुख छुपा। एक और देखेंगे तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और नीति वचन 25 अध्याय उसका 24 पद, झगड़ालू स्त्री के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत पर एक कोने में रहना उत्तम है। झगड़ालू पत्नी, पतियों के बारे में भी बहुत है नीति वचन। देखिए नीति वचन एक ऐसा है जो पति पत्नी के संबंध के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो पति जो नशा करते हैं, अपनी पत्नियों को पीटते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। पत्नियों के बारे में बहुत कुछ बताता है। बच्चों के बारे में बहुत बताता है, माँ बाप का कैसा संबंध होना चाहिए। माँ बाप के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, क्यों, कारण कुछ और था। तो यहाँ पर वो कह रहा है एक स्त्री है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका चरित्र ऐसा है, उसकी आदत ऐसी है, छोटे छोटे बातों में वो झगड़ा करती है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करती है। अगर ऐसा है तो कल घर की स्थिति क्या होगी। घर के स्त्रियों को धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है, ये मतलब नहीं कि पुरुष को नहीं रखना चाहिए, पुरुष को भी रखना है। पुरुष को जल्दी से हाथ नहीं उठा देना, गाली नहीं दे देना, मारना नहीं है, वो गलत है, परमेश्वर का वचन वो अनुमति नहीं देता, उसको साधन रहना पत्रस में बहुत स्पष्ट रूप से करता है। पर यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस तरह के स्वभाव के स्त्री के साथ रहना कठिन है। सो उसका तरीका है समझाने का, ठीक इसी तरह से वो सुलेमान यहाँ पर भी लिख रहा है, जो जिसको आज हम देखना चाहेंगे। 2 चीज़ को सामने लाकर उसकी वो व्याख्या करता है, और अगर जब हम इसको समझते हैं तब हम इसको अपने जीवन में लागू करते हैं। अब जब हम सबोपदेश 7 में आते हैं, तो मैंने कहा 7 पद से लेकर के पहले पद से लेकर के 14 पद तक 7 बातें हैं जिसके बारे में वो जोर देता है। पहली बात 7वां अध्याय, अच्छा नाम अनमोल इत्र से। दूसरी बात, और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अधिक अच्छा। तो 2 चीज़ें हैं अपन, पहली बात क्या है, पहली चीज़ 7 बातों में, पहली बात क्या है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से अच्छा है या उत्तम है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। उस समय की संस्कृति में इत्र का बहुत उपयोग होता था, और जब लोग अगर यात्रा करते थे तो उनको जब लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, 2 मील 3 मील 4 मील पैदल चलते थे, तो उनको पसीना आता था और कई जगह धूल में से होकर उनको जाना पड़ता था, गर्द में सो करके, और वो उनके सारे शरीर को गंदा कर देता, और पानी की व्यवस्थाएं इतनी अधिक वहाँ नहीं थी। तो ऐसम में वो लोग साफ सुथरा हो करके, साफ सुथरा करके इत्र को लगा करते थे, ताकि इत्र से किसी प्रकार से उस इत्र जो है उनके शरीर की जो बदबू है, चाहे धूल के कारण, चाहे गंदगी के कारण, चाहे पसीने के कारण, वो छिप जाए। और बहुत महंगे महंगे इत्रों का समय इस्तेमाल किया जाता था। आज भी जो सुस्त लोग हैं वो इत्र का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चार दिन नहाएंगे नहीं, इत्र डाल देंगे, सैंड डाल डाल के जीवन व्यतीत करेंगे, कपड़ों में सैंड डाल के पहनेंगे। बाइबल कहीं उस तरह का नहीं सिखाती, पर उस समय की स्थिति थी। इत्र को बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता था। इत्र से जब लोग मेहमान घर में आते थे तो उनका स्वागत किया जाता था। जैसे हम यूहन्ना उसके 12 अध्याय में मरियम को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह घर में आए तो मरियम ने पात्र तोड़ करके इत्र उनके चरणों में डाला है। उससे पहले, सेवा से पहले एक बार और सर पे उनके उंडेला है। तो इत्र का समय इस्तेमाल बहुत होता था, लेकिन खुशबू कमरे में या कहीं भी सुगंधित लोग बहुत पसंद करते थे। परंतु वो थोड़े समय बाद वो इत्र की खुशबू है जो कुछ है वो खत समाप्त हो जाती थी, उड़ जाती थी। फिर उनको डालना पड़ता था, बार बार उनको ही करना पड़ता था। इत्र डाला है, कुछ समय उसकी खुशबू आई है और उसके बाद उड़ गया है। कई बार हमारे जीवन में भी आ सकता है, आज भी वो स्थिति वही है। आप लगाएंगे थोड़ी देर बाद उड़ जाएगी, थोड़ी देर खुशबू आएगी उतर आएगी। लेकिन वो कह रहा जो अच्छा नाम जो है उससे अधिक अच्छा है। अब दो चीज़ की तुलना है, अच्छा नाम कभी नहीं मिटेगा, अच्छे नाम की खुशबू कहीं ख़त्म नहीं होगी, अच्छा नाम फैलता चला जाएगा। और बार बार वो इस बात को कहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सात बातें हैं, या कह दीजिए सात तरीके हैं जिसके द्वारा हम उत्तम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये सात बातें या सात तरीके इन 15 पद में, 7:1, 7:2, 7:3, 7:5, 7:7। सो इन पदों में सुलेमान क्या समझाना चाह रहा है? सुलेमान ये समझाना चाह रहा है कि अगर मेरे और आपके पास, यदि मेरे और आपके पास सच्ची बुद्धि है तो उससे क्या क्या लाभ है। सच्ची बुद्धि क्या है और सच्ची बुद्धि इसे मैं जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ, या कैसे मैं प्राप्त करता हूँ, कैसे मैं इस बुद्धि को प्राप्त करता हूँ। बुद्धि सबको चाहिए, परमेश्वर के दया से बुद्धि सबको चाहिए। तो एक संसारी भी बुद्धि प्राप्त करता है, वो अपने संसार के लिए काम में लगाता है। एक आत्मिक बुद्धि प्राप्त करता है, वो आत्मिक जीवन का निर्माण करने में और परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करने में लगाता है। और दोनों में फर्क है। जो आत्मिक बुद्धि है वो आत्मिक जीवन का निर्माण करती है, और इसलिए उसका जीवन और उसका स्वभाव, उसका चरित्र आत्मिकता में बढ़ता चला आता है। लेकिन जो सांसारिक और शारीरिक बुद्धि है, उसका जीवन सांसारिक शारीरिक के लिए उलझ रहता है, और उसी तरह से वो अपने जीवन को चलाता है, बहुत सारे ऐसे काम करता है जो उसमें वर्णन करता है। और इसीलिए वो पहले पद में कहता है कि इसलिए ध्यान दीजिए, जो बुद्धि संतुलित बुद्धि, बैलेंस्ड बुद्धि, सांसारिक आत्मिक, हम बहुत अधिक आत्मिक नहीं हैं, हम बहुत अधिक संसारिक, हम आत्मिक हैं लेकिन इस संसार में हैं, और हमारा जीवन एक संतुलित बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। तो संतुलित बुद्धि जो है वो जीवन प्रदान करती है, सबसे पहली बात। और जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है, बिना प्रभु यीशु मसीह के जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आया, इसलिए आया ताकि लोग जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। और बार बार उस जीवन की बात करता है, आगे हम कुछ पदों को और देखेंगे। दूसरी बात, संतुलित बुद्धि जो है संतुलित शक्ति प्रदान करती है। अब ये शक्ति लड़ने वाली शक्ति नहीं है, शक्ति उसको विस्तार से हम आगे चल के देखेंगे। तीसरी बात, ये संतुलित बुद्धि जो है जो अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, वो दृष्टि प्रदान करती है जिससे हम दूर की चीज़ों को या अंदर की बातों को देख करके समझ सकते हैं, वो दृष्टि प्रदान करती है। एक समझने की नई दृष्टि आ जाती है, लोगों को पहचानने की नई दृष्टि आ जाती है, अपने निर्णयों को लेने के लिए एक नई दृष्टि आती है, अंतर्दृष्टि इसको बोलते हैं, इनसाइट इंग्लिश में बोलते हैं, इनसाइट वो प्राप्त होती है हमें, ये जो सच्ची बुद्धि है, और ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुलेमान जब 7वें अध्याय में आ रहा है तो ये कह रहा है भैया ये सच्ची बात है, मैंने तो बुद्धि प्राप्त करी लेकिन जो बुद्धि प्राप्त करी वो ज़्यादा काम की नहीं थी। ठीक, कुछ दिन मैं खुश रहा, ये सब कुछ है, लेकिन वो मुझे संतुष्टि नहीं कर सके। मैंने स्त्रियों के बारे में सोचा, मैंने धन के बारे में सोचा, मैंने नाम के बारे में सोचा, मैंने फल के बारे में सोचा, मैंने सब कुछ के बारे में सोचा, अपनी सेना को बढ़ाया, सब कुछ कराया, जो कि संसार में सब कुछ को बढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई चीज़ मुझे संतुष्टि नहीं दे सकी। ये उसकी अंतर्दृष्टि थी, ये इनसाइट उसको मिल गई, और इसलिए अब वो घूम कर वापस आकर के परमेश्वर के पास आता है। तो अंतर्दृष्टि ताकि ये जान सके कि जीवन परमेश्वर की खोज और प्राप्ति के लिए है, परमेश्वर के, हमने परमेश्वर को पाया है, हम परमेश्वर को पा रहे हैं, हम परमेश्वर को पाते चले जाएंगे। परमेश्वर को पा करके बैठ जाना खत्म नहीं होता। पा लिया हमने, हाँ आज से 5 साल पहले हमने प्रभु ग्रहण किया था, नहीं नहीं, अभी क्या है, कल क्या है, बीता समय बेकार है, वो हो गया क्या? लेकिन हमने, हम उसको प्रतिदिन पाते चले जा रहे हैं, हम और अधिक उसको पहचानते चले जा रहे हैं, और अधिक उसको जानते चले। ये मसीह जीवन है, ये स्वर्गीय बुद्धि प्रदान करती है। तो वो ये कह रहा है, तो ये चीज़ को, इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो आगे चल के कहता है कि जो अच्छा नाम है वो अनमोल इत्र से उत्तम है। अच्छा नाम जिसने अच्छी बुद्धि को प्राप्त करके अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत किया है कि उसने समाज के सामने, परिवार के सामने, कलीसिया सामने एक अच्छा नाम पाया है। मान लीजिए एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, और वो उसके पिताजी हैं, और के पिता, अगर वो कोई आता उसके पास, अच्छा तुम फलाने लड़के हो, हाँ फलाने के लड़के हैं, अच्छा वो जो अभी जेल में है या जिनको अभी लड़ते हुए पकड़ लिया गया था, वो तुम्हारे पिताजी हैं, क्या हो गया, ये अच्छा नाम नहीं है, उसके कारण बेटा भी का नाम भी खराब हुआ, अच्छा तुम उनके लड़के हो। लेकिन अगर मान लीजिए उसी बेटे से कहा जाए, अच्छा तुम उनके लड़के हो, वो जो सेवक करते हैं, अच्छा जो वहाँ पर ऐसा रहते हैं, जो बहुत अच्छे हैं सीधे, कल हम एक जगह गए मतलब कुछ काम से, तो पड़ोसी जो थे उस परिवार के बारे में कहने लगे कि साहब ये परिवार लोग अच्छे नहीं थे, बहुत मतलब मुझे दुख हुआ, एक मसीह परिवार के लिए, एक हिंदू परिवार वाले कहते ये मसीह परिवार के लोग ये अच्छे नहीं थे, दुख की बात है कि उस दिन कहा कि वो हमसे अपना घर का किराया मांग रहे थे, हमने अपना घर देने से मना कर दिया, ये अच्छी साक्षी नहीं है। सो इसीलिए अच्छा नाम नहीं है, हम इत्र कितना लगा ले लेकिन नाम हमारा खराब हो रहा है, हमें अगर लोग चोर समझ रहे हैं, लोग धोखेबाज समझ रहे हैं, लोग छरी समझ रहे हैं, लोग कुछ और समझ रहे हैं, तो बेकार है। और हमें वो जीवन व्यतीत करना है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, जिस वचन में होकर के हमारा नाम परमेश्वर की महिमा के लिए दूसरों सामने एक अच्छा नाम बन सके, और वो परमेश्वर का वचन करता है, वो परमेश्वर का आत्मा करता है, वो परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करने से मिलता है, वो परमेश्वर का वचन का आदर करने से मिलता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। तो कह रहा है दूसरी बात, वो क्या कहता है, जन्म के दिन से मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अच्छा है, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अच्छा है। कितना अद्भुत बात कह रहा है, क्यों कह रहा है मृत्यु का नाम, पहले वो नाम की बात करता है ना, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसने अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से अपने नाम को अच्छा प्रकट किया है दूसरों सामने, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन से अपने नाम को बुरा कहा है। अब वो कहता है मृत्यु के दिन से जन्म के दिन उत्तम है। भारत में कहावत कही जाती है, जन्म के समय तुम बच्चा जो पैदा होता है वो रोता है और समाज हंसता है, जब समाज खुश होता है, समाज हंसता है, खुश होता है, सही बात है, ये परिवार के लोग, जन्म के समय बच्चा रोता है लेकिन जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो हंसते हैं, खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं, इसलिए हंसते हैं। लेकिन मृत्यु के समय संसार होता है, परंतु ये उस व्यक्ति ने यदि अच्छा काम किया है तब लोग आनंदित भी होते हैं मृत्यु के समय। मेरे प्रियो इसीलिए कह रहा है, जन्म के समय तो आदमी को किसी नहीं मालूम कि वो कल क्या करेगा, क्या बनेगा, लेकिन जब मृत्यु हो रही है तब वहाँ पता चलता है, अच्छा इस व्यक्ति ने ये ऐसा जीवन व्यतीत करा, अच्छा इस व्यक्ति का ये ऐसा जीवन था, अरे तो बहुत खराब था लेकिन जब से प्रभु में आया है इसका जीवन बदल गया है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जब तक प्रभु में नहीं आए थे उनका जीवन बहुत ही बेकार था, लड़ाई झगड़े नशे का, लेकिन प्रभु में आने के बाद, यहाँ तक कि उनके घर के लोग साक्षी देते हैं, अरे इनको हमने देखा है कि बदल गए। कितने लोग हम साक्षी देते हैं। सो कह रहा है, और इसलिए मृत्यु को, तो जब मृत्यु होती है और आदमी मरता है तो उस समय किस नाम को लेके जाता है, कैसे दिन, किस तरह का उसका दिन है। अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, यदि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा नहीं किया तो लोग उसके लिए ज़्यादा नहीं रोएंगे। और किसी ने कहा है जितना अधिक किसी की मृत्यु के बाद जितने लोग रोने वाले होते हैं उतना अधिक शाप व्यक्ति लोगों पर छोड़ कर जाता है। जितना अधिक लोग रोने वाले, जैसे लोगों को खबर मिलती है, देखते हमने बहुत सारे ऐसे लोगों देखा। भाई भक्त सिंह का नाम सुना है, भाई भक्त सिंह पंजाबी कन्वर्ट थे, जब पंजाब से जब उन्होंने प्रभु पाया तो उनको उनके घर वालों ने निकाल दिया, उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और पढ़ाई करने बाहर थे, वहीं पर प्रभु पाया था, जब आए निकाल दिया। और उसके बाद जब उनको निकाल दिया गया तो उनकी वाइफ ने भी उनको छोड़ दिया। वो वहाँ से पंजाब से निकल करके यहाँ पर हैदराबाद आ गए, और हैदराबाद करते 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 प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया और उनकी सेवा इतनी अधिक बढ़ी, जो भाई भक्त सिंह की असेंबली कहलाई का आज भी ये कही जाती है, उनके नाम से उनकी असेंबली बहुत चली है। मैं शुरू शुरू में उसी असेंबली में मैंने वचन सीखा और मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने उसे उनको देखा, मैं बहुत उसकी उनकी साक्षी पढ़ी तो बहुत ही आशीष में साक्षी है। जब उनकी मृत्यु हुई, पूरा हैदराबाद वो एरिया जहाँ पर उनका चर्च है, सारी दुकानें बंद थी और इतने लोग थे कि पुलिस कंट्रोल करना मुश्किल होती थी उनके फ्यूनल में। अच्छे अच्छे लोगों में कई हज़ार लोग थे, कई हज़ार लोग। और जब उनका भाई पंजाब से आया, उसने देखा मेरे भाई की मृत्यु में इतने लोग, तो उसने आश्चर्य करा। उसने बाद में कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई को मृत्यु के समय में इतना सम्मान मिलेगा। मेरे प्रिय सच्ची बात है, उनके लिए मृत्यु का आज भी उनके नाम से वो मंडलियाँ चल रही हैं, भाई भक्त सिंह मंडली। बहुत अच्छे वचन की शिक्षा थी, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत सारी चीज़ें थी उनकी बातों में, और बहुत ही कठोरता के साथ लोगों से व्यवहार करते थे। उनकी मंडली में एक बहन आती थी, चर्च में बहन आती थी और खूब फैशन करके आती थी। मान नई नई शायद शादी हुई थी और खूब फैशन करके आके सामने ही बैठती थी। एक दो बार उन्होंने समझाया, नहीं समझ में आया। एक संडे को उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा तू निकल, दोबारा चर्च में मत आना, आना तो सुधर के आना, नहीं तो आना। कहा जाता है वो बाद में रोई घर में जाके पछताव करा, और जा करके उसने सब अपने जीवन को उसने प्रभु ने उसके कार्य किया। और बाद में उनका विवाह एक भाई से हुआ, नोबल मैसी से, जो बाद में वो भी वो सेवक थे, और उसके बाद पूरे परिवार ने सेवा करी। भाई की डेथ हो गई, उनकी भी डेथ हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बाइबल की जो शॉप चलती है उनके नाम से आज भी चलती है, वो छोड़ के गए। तो भारत में बहुत सारी ऐसी कहानी है, भारत में बहुत सारे ऐसा, बाहर निकल के देखिए कितने लोग हैं जिनके जीवनों को हम जानते हैं। भारत में, बाहर की बात तो छोड़ दी, हमारे देश में कितने लोग ऐसे। सो एक बहुत दर्द। तो दूसरी बात, जन्म का दिन, आप अपने दिन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। कल अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो लोग आपको क्या कहेंगे, आपके लिए क्या कहेंगे? अच्छा था मर गया, बड़ा निकम्मा था, धोखेबाज था, ऐसा था, वैसा था। या फिर आपकी मृत्यु के दिन में आपको स्मरण करके वो रोएंगे, याद करिए। और वो कहता है तीसरी बात, तीसरा चौथा पद, उत्सव मनाने वाले इसके घर जाने की अपेक्षा शोक मनाने वाले के घर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अंत यही है और जीवित मनुष्य इस पर मन लगाकर विचार करेगा। शोक हंसी से अधिक अच्छा है, क्योंकि चेहरे के शोकित होने पर हृदय आनंदित हो सकता है। शोक हंसी से अधिक अच्छा है, क्योंकि चेहरे के शोकित होने पर हृदय आनंदित हो सकेगा। उत्सव मनाने वाले के घर जाने की अपेक्षा शोक मनाने वाले के घर जाना अच्छा। क्या मतलब है? नहीं, हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी के यहाँ उत्सव है, किसी के यहाँ शादी है, ब्याह है, वो हमें बुलाएं तो हम ना जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए, आप मान लीजिए किसी के यहाँ विवाह है, आप वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आप हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, सब लोग मस्ती में कर रहे हैं, वो अच्छा है। लोगों को वहाँ पर आपकी बात ध्यान में नहीं आएगी। मान अगर विवाह का समय है तो उनका ध्यान केक काटने में, शादी में, खाने में, दावत में, इस चीज़ में रहेगा। लेकिन अगर शोक माना है, कोई किसी मृत्यु हो गई और अगर आप वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर सारे लोग गंभीर हैं, और गंभीर होने के कारण वहाँ पर आपके लिए अच्छा मौका है कि वहाँ पर आप उसके शोक में होकर के आप उसको संतावना दे सकें, संतावना प्रभु का वचन बांट सकें, प्रभु की साक्षी बांट सकें। यहाँ एक बहन थी डालीगंज में, उनका मिसेस अग्रवाल करके, और वो प्रभु में आ गई, और उसका पति पर विश्वास नहीं करता था, उनकी मिल थी काफ़ी, और बहुत पुरानी कहानी है। एक बार हमारे घर आ गए, उसके पति ने आंटी को गोली बंदूक से मार देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि ये वचन पढ़ाती थी उनको, सिखाती थी, उनको बात करती थी कि तुमने उनको क्रिश्चियन बनाया है, तुम्हें नहीं कराया। लेकिन वो अपने विश्वास में बहुत दृढ़ थी, बहुत दृढ़ थी। प्रभु धन्यवाद, आज भी लखनऊ में एक चर्च के मेंबर हैं। किसी परिवार की मृत्यु हो गई, ये बहन गई, सारी बहनें वहाँ पर बैठी हुई थी और सब शोक मना रहे थे, और इस बहन ने खड़े होकर के वहाँ पर वचन दिया, अपनी साक्षी दी और वचन दिया। वहाँ का वातावरण सारा बदल गया। बाद में आके वो बहन बताने लगी हमें कि जब मैं वहाँ गई थी वहाँ पर इस तरह से वातावरण था, जब मैंने अपनी साक्षी दी और प्रभु का वचन बताया तो बहनों का मन बिल्कुल बदल गया, कहने अरे ऐसा है, और जो शोक था वो खत्म हो गया और वो एकदम से प्रभु के बारे में बात करने लगे। मेरे पे सच है, जब ऐसा वातावरण होता है आदमी सुनने के लिए तैयार होता है। उस सब के समय में आदमी सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, ये ध्यान रहेगा। दफन के समय में लोग सोचते हैं उनका जीवन क्या है, बाप के समान है, बुबले के समान है। दफन के समय में लोग सुसमाचार पर ध्यान देते हैं और स्वयं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। मृत्यु दफन क्रिया के समय सब शांत रहते हैं और ध्यान से वचन को सुनने तैयार होते हैं, और इसलिए कहता है कि कोई भी शोकित व्यक्ति है आप जाएंगे वो अच्छा है, आप उसको तसल्ली देंगे, प्रभु के बारे में वचन देंगे, कुछ बातचीत करेंगे, और आपके वचन के द्वारा, आपकी साक्षी के द्वारा आपको उसको संतावना देंगे, वो उसके लिए कारण बनेगा। और तब तीसरे पद में शोक हंसी से अधिक अच्छा है, क्योंकि चेहरे के शोकित होने पर हृदय आनंदित हो सकता है। चेहरा तो शोकित है लेकिन जो वचन वो सुनेगा, साक्षी वो सुनेगा, सुसमाचार सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के संबंध का, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को कि प्रभु यीशु प्यार करता है और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जीवन देने के लिए मुझे और आपको बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया, वो सब कुछ सुनेगा तो उसके हृदय में आनंद उत्पन्न हो सकता है। चेहरा तो शोकित होता है लेकिन हृदय में आनंद होता है, ये वो कहना चाह रहा है। तब आगे चल करके तो ये अच्छा होता है कि हमारे अंदर ये इच्छा हो कि प्रभु में क्या सीख सकते हैं, स्वयं जीवन में कैसे पवित्र बनते हैं। शोक के समय देखिए कई तरह, अगर मान लीजिए हमारे पर व्यक्तिगत रिश्ते शोक है, हो सकता है बीमारी कारण शोक है, हो सकता है किसी मृत्यु कारण शोक है, हो सकता है किसी दुर्घटना के कारण शोक है, हो सकता है परिवार के संबंधों में आपस में कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण शोक है, कई सारे कारण होते हैं शोक होने के। अगर आपके अंदर शोक है तो वो शोक में आप कई सारी बातें, पहली बात आप परमेश्वर की निकटता में आकर के उस शोक का कारण पूछ सकते हैं, दूसरी बात अगर आपके अंदर कोई पाप है तो उस पाप के कारण शोक है तो पाप से पश्चाताप कर सकते हैं। कई बार पाप भी हमारे जीवन में शोक उत्पन्न कर देता है और बाइबल में हम पाते हैं उस पाप के कारण आप परमेश्वर से क्षमा मांग करके उस शोक से दूर होते हैं। कई बार जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो जटिल परिस्थिति है, आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर ऐसे समय में आपका विश्वास स्थिर रखे, आपको आशा दे ताकि आप विश्वास में और मजबूत हो करें तो आप और अधिक आगे बढ़ जाएं, तो वो शोक का समय आपका परमेश्वर के साथ संबंध गहरे होने में सहायता करेगा, वचन में बढ़ने का सहायता करेगा, विश्वास में बढ़ने का सहायता करेगा, आपकी आशा को मजबूत करेगा, आप और अधिक परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, क्योंकि वो शोक जो है वो आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर रहा, परमेश्वर की निकटता में ला रहा है। मुझे याद है जब मुझे 2017 में बेल पाल्सी का अटैक आया था, मेरे मुँह पर एकदम से एक महीने में मेरी तबीयत खराब हुई, पहले ही रात्रि मैं बैठ करके मैंने परमेश्वर के वचन को खोल करके परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर ने मुझसे बातें की और परमेश्वर मुझे दिखाया सिखाया, मैं उसको कभी नहीं भूलता, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो मेरी एक आशीष का समय बन गया, मेरे लिए आदर का समय बन गया, दर्द था, पीड़ा थी, नींद नहीं आती, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आनंद प्रदान कर रहा था, और तब परमेश्वर ने सिखाया कि तुझे अपने जीवन को किस प्रकार से और मेरी निकटता में व्यतीत कर। सो कई बार ये शोक का समय हमें परमेश्वर की निकटता में लाने का, अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस शोक के समय में किस प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाते हैं, चिढ़ते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पर दोष देते हैं, हाय हाय करते हैं, कुछ और करते हैं, या परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर तू जानता है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा सृष्टि करता है, हम आपकी संतान है, आपने कहा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, और वो और अधिक आपको आपके परमेश्वर की निकटता में ला करके मजबूत बनाता है। तो जो चीज़ कल आने वाली है जिसको आप नहीं देख सकते, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी कल उत्तम रखा है, वो आपको बाद में प्राप्त हो सकती है। अभी वर्तमान में आपके शोक के समय परमेश्वर में निर्भरता भविष्य में आपके लिए आशीष को प्रदान कर सकती है। सो इस बात को ध्यान दीजिए कि वर्तमान हम किस तरह से परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहे हैं विभिन्न परिस्थिति में, और ये कह रहा है तब कहता है तब चार पद हैं, बुद्धिमान का हृदय शोक करने वालों के घर में लगा रहता है, परंतु मूर्ख का हृदय सुख विलास करने वालों के घर में लगाता। सुख विलास कि वहाँ जाएंगे, वहाँ भोजन करेंगे, वहाँ दावत मिलेगी, वहाँ खाना खाएंगे, वहाँ ही होगा, ओ ठीक है, वो आनंद मना रहे हैं हम उनके। लेकिन जो दुखी है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हमें दुखी के साथ बाइबल कहती है जो शोक करने वाला उसके साथ शोक कर चो। प्रभु कहता है जो तुम जो शोक करते हैं वो संतावना पाएंगे। प्रभु विश्वस ने पहाड़ उपदेश में कहा, प्रभु विश्व संतावना देने वाला परमेश्वर है। और हमें मेरे और आपसे चाहता है कि हम भी ऐसे समय में उस परिवार के साथ खड़े होकर, उन लोगों के साथ खड़े होकर के उनको संतावना दे सकें। और वो कहता है कि उसके कारण शोक करने वालों के बुद्धिमान का हृदय शोक करने वालों के घर में लगा। ये नई बुद्धि है, ये परमेश्वर के साथ बह चलने वाली बुद्धि है। संसारी बुद्धि ठीक, कोई बात नहीं, हो गया, हमने पूछ लिया, हाल चाल पूछ लिया, काफ़ी है, अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ दावत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ मौज मस्ती करेंगे। नहीं, परमेश्वर का चौथी बात, पाँच से छः पद, बुद्धिमान की डांट सुनना मूर्खों के गीत सुनने से उत्तम है। बुद्धिमान की डांट सुनना, आज कोई भी या जवान बच्चे भी डांट नहीं सुनना मांग, किसी से आप सख्ती से बात नहीं कर सकते आज के समय में, जबकि परमेश्वर का जन बार 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 इस बात को सिखाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम उन्हीं का जीवन बर्बाद होता है, उनका जीवन सुधरता नहीं, वो अपनी आदत को सुधारते नहीं, कि कोई सुधारने के लिए है नहीं, कोई उनको चेक नहीं कर सकता, कोई उनको डांट नहीं सकता, कोई उनको समझा नहीं सकता, कोई उनको बोलना, ये कौन होते हैं बोलने वाले हमारे, हमें कहने वाले कौन होते हैं, हमें क्यों कह रहे हैं, अपने को देखें ना, ये हाल है, इस तरह से व्यवहार है। और इसलिए बाइबल क्या कहती है, साफ कहती है कि बुद्धिमान की डांट सुनना मूर्खों के गीत गाने होता है। वो मूर्खों का गीत है ना, परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ, जब आपको कुछ कहा जाता है तो आप अपनी दृष्टि में आप हमेशा क्या समझते हैं, मैं सही हूँ, किसी को चेक कराता है मैं सही हूँ, ये मुझे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, दाऊद को नातान ने डांटा था, दाऊद ने पाप किया, नातान अभी आया, नातान ने डांट लगाई, दाऊद ने बहुत अच्छा प्रति उत्तर उसको दिया और सकारात्मक रीति से उसको लेकर के परमेश्वर से क्षमा मांगी, नातान से क्षमा मांगी, और जो कुछ भी नाता ने कहा उसने करने के लिए तैयार हुआ। परिणाम क्या हुआ? दाऊद उस पाप में से निकल करके आगे बढ़ गया और परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के इस्तेमाल किया। अगर मान लीजिए उसको डांट उस समय बुरी लगती और वो नहीं सुनता, नातान तू कौन है मुझे कहने वाला, और वो आगे उसके अनुसार न करता, क्या आज दाऊद का नाम वो होता? नहीं होता। और कितनी बार हम आज के कारण अपने कल के भविष्य को नुकसान पहुँचा देते हैं, कितने लोग हैं आज के कारण कल के भविष्य को नुकसान देते हैं। मुझे मालूम है जब मैं भी इन भाइयों के समान छोटा से अनुशासन में रहा हूँ, और किस कई रीति से लिखा है पहला तीमोथियुस 5:20, जो पाप करते रहते हैं उन्हें सबके सामने डांट, जिससे अन्य लोग भी पाप करने से डरें। बाइबल बताती है डांटने के बारे में, नए नियम में भी कई जगह है डांटना। अब ये मतलब नहीं कि हम इस तरह से डांटें कि उसकी हानि पहुँचाएँ, हमारे अंदर डांट के अंदर सुधार की आत्मा होनी चाहिए, हमारे डांट के अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी ये होना चाहिए कि ये जीवन संभल जाए, ये परिवार संभल जाए, ये जीवन परमेश्वर के रास्ते पे आ जाए, और ये अपनी गलती और अपने पाप अपने अपराध मान करके प्रभु के पास और प्रभु के लोगों के साथ मिल के आगे चले, ये चीज़ है। तो उस डांट में एक सुधार की बात पाई जाती है, और अगर एक सुधार की बात में को लेकर कोई डांटता है और दूसरा जन उसको उसका नकारात्मक उत्तर देता है तो नुकसान उसी को होता है। बाइबल में कई सारे नीति वचन 9:8-9 में, भजन संहिता 143:5, यहाँ दाऊद क्या कहता है, धर्मी मुझे मारे तो दया होगी और मेरी ताड़ना करे तो मेरे सिर पर तेल होगा, मेरा सिर इससे इनकार ना करे, उनके बुरे कार्य करने के लिए भी मैं उनकी प्रशंसा करूँगा। क्या कह रहा, अगर धर्मी मुझे डांटे तो क्या होगा मेरे लिए, वो अच्छा होगा, दया होगी, मेरी ताड़ना करे तो यदि सिर पर तेल होगा, मेरे सिर से इनकार ना करें। कितना अच्छा विचार उसका, क्या कह रहा है, क्योंकि उनकी डांट मेरे जीवन को सुधार सकेगी। मेरे प्रियो यही है, और इसीलिए सुलेमान कुछ आगे कुछ और लिखता है। आगे चलकर जल्दी से पांचवी बात को देखें, 7 और 8 धीरज के साथ परमेश्वर की पाठ छोना सीखें। बल्कि 6 हमने छोड़ दिया, जैसे हांडी के कांटे चचराहट होती है वैसे मूर्खों में हंसी पाई जाएगी। 7, बुद्धिमान मनुष्य को अत्याचार पागल बना देता है, घूस हृदय को भ्रष्ट कर देता है, किसी विषय का अंत उसके आरंभ से अधिक अच्छा है, मनुष्य का धैर्य उसके अहंकार से अधिक अच्छा है। अब क्या कह रहा है वो? कह रहा बुद्धिमान, वो बुद्धिमान जो पर जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि है। संसार का बुद्धिमान व्यक्ति सांसारिक बुद्धि को उपयोग करके अपने धन संपत्ति को बढ़ाता है, अपने ऐश आराम की जीव को बढ़ाता है, वो उस रीति चलता है। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करता है, उसके अंदर एक विचार पाता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या सही रीति से कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। और तो कहता है आगे क्या कहता है, कहता है पागल बना, घूस हृदय को भ्रष्ट करता है। बाइबल में घूस लेना बिल्कुल मना है, देना भी मना है, लेना भी मना है। इसलिए नौकरी के लिए पैसा मत दीजिए, प्रभु उससे आपके लिए कोई दूसरा रास्ता सोच रहा हो, पर प्रभु आपको कहीं और ले जाना चाह रहा हो। प्रभु से पीछे प्रभु आप क्या चाहते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए। और बड़ी सरलता से लोग घूस देकर के नौकरी पाना चाहते हैं, लोग घूस लेते हैं, वो भी गलत करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत करते हैं। अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उनका ऐसा काम छोड़ देना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि किसी से परमेश्वर किसी को भूखे नहीं मनाता। लेकिन एक विश्वासी का संकल्प ही होता है कि मैं पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करूँगा तो वो काम करूँगा जो परमेश्वर चाहेगा, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, जिससे परमेश्वर को सम्मान मिलेगा। वो क्या कह रहा, बुद्धिमान मनुष्य को अत्याचार पागल बना देता। क्या मतलब अत्याचार पागल? अत्याचार पागल गलत, धोखा, छल, झूठ, उसको पागल बनाता। उसको सुन करके बौखला जाता है, उसे प्रसन्न नहीं होता, वो उससे समझौता नहीं करता, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। बाइबल में लिखा नीति वचन कहता है धर्मी जन झूठ से घृणा करता है। अगर कभी कभी आपके मुंह से झूठ निकल जाए बात दूसरी है, लेकिन जानबूझ के झूठ की आदत मत डालिए। हर बात में झूठ बोल रहे हैं, हर बात में झूठ बोल रहे हैं, वो गलत है, वो परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। वो आपके अंदर आदत बन गई है और उस आदत से फिर आप निकल नहीं पाएंगे, तो ये देखना है। तो ये कह रहा है हम पागलों ने हृदय को ब्रश कर, घूस हृदय, घूस क्या मतलब है? घूस लेकर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर को बढ़ा सकते हैं, अपने धन को बढ़ा सकते हैं, अपने वैभव को बढ़ा सकते हैं, अपने सुख सुविधा को बढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए आगे चल करके हानियों का कारण होती है। परमेश्वर का न्याय है, वो आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा और आप परमेश्वर के सामने दंड के क्या लोग कहलाएंगे। इसलिए सावधान रहिए, बाइबल ने बार 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 इस बात को कहा है। तो कई बार हम ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और परिवार में पति पत्नी के अंदर भी ये समझ और ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी प्रकार से वो इस चीज़ को बढ़ावा ना दें। पति को समझना चाहिए ठीक है जो मेरे पास है, पत्नी को समझना चाहिए उससे मैं संतुष्ट हूँ, मेरा पति गलत काम ना करने पाए। कितनी बार पत्नियाँ सोचती हैं कि नहीं मुझे तो ये चाहिए चाहे कहीं से भी आए, नहीं 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 भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये करना गलत है। पत्नी कहेगी मैं नहीं चाहती कि तुम गलत करो, हम तो वहाँ साथ हैं, ठीक है हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन गलत मत करो। धीरे धीरे परमेश्वर अपना उपाय करेगा और कई बार परमेश्वर हमें देखता है, सांसता है और उसके बाद वो करता है। वो कह रहा है धैर्य उसके के अहंकार से अधिक अच्छा है। धैर्य रखना, धीरज रखना अहंकार से अच्छा है। अहंकार में होकर हम सब कुछ कर रहे हैं, घूस भी ले रहे हैं, इसको भी मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसको चक्कर है, उसको दौड़ा रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। परसों एक परिवार आया, हम बैठ के बात करते हैं तो बेचारा वो कहने का कि मैं वहाँ काम करता हूँ लेकिन मालिक जो है सही रीति से पैसा नहीं देता है। और कितने मालिक हैं जिस तरह से सही रीति से पैसा नहीं देते, मजदूर से काम कराते हैं लेकिन पैसा नहीं देते, अपना पैसा बढ़ा रहे हैं, वो गलत तरीका है। लेकिन ये भाई क्या कर रहे हैं, धीरज रखे हुए, निर्बल है। कई कारण से, कई बार निर्बल होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण धैर्य रखना पड़ता है, मजबूर। लेकिन हम जो विश्वासी हैं हम इसलिए धैर्य रखने तैयार होते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और परमेश्वर के वचन का पालन करना परमेश्वर का सम्मान करना है। प्रभु एक वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा और इसलिए हमें सावधान होना है। वो कह रहा है ये धीरज के साथ, तो हमें धीरज से बाढ़ जोना सीखना चाहिए। 7:9-12 अपने हृदय में क्रोध करने से में उतावली मत कर, क्रोध करने में उतावली। क्रोध मनुष्य के अंदर क्रोध है, कोई मनुष्य नहीं कहता मैं क्रोध नहीं करता, हर मनुष्य क्रोध करता है। अगर पागल होगा तभी क्रोध नहीं करेगा क्योंकि क्रोध मनुष्य के स्वभाव में आराम से पाया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, तुम्हारी जीभ क्रोध ना कराए, तुम्हारे जीव में कोई ऐसा बात ना निकले, ऐसा शब्द ना निकले जो क्रोध के साथ हो और पाप के साथ हो, इसके साथ न। लेकिन वही क्या कह रहा है नौपद ने, अपने हृदय में क्रोध करने के लिए उतावली मत कर क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में वास करता है। मत कहना, क्या कारण है कि बीते दिन इन दिनों से अधिक अच्छे थे, क्योंकि तू जो इसके विषय पूछता है वो बुद्धिमान पूर्ण है। बुद्धिमानी उत्तराधिकारी के साथ अच्छी होती है और जीवित रहने वालों के लिए ये लाभदायक है, क्योंकि रुपए पैसे के समान ही बुद्धि भी संरक्षण प्रदान करती है, परंतु ज्ञान का लाभ ये है कि वो अपने रखवालों के जीवन की रक्षा करता है। सो बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी यह है कि वो हमारे प्राणों कैसे संरक्षण करता है। जब हम क्रोध करते हैं तो पाप करते हैं, क्रोध करते हैं बुराई करते हैं, कई बार क्रोध से लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के कहते हैं गाँव में जो छोटी सी बात हुई, नाली तूने मेरे बना ली, उसी नाली के लेके लड़ाई शुरू गए और लड़ाई करते करते दो परिवार भिड़ गए, लाठी चल गई, उसके बाद पुलिस केस हो गया, बढ़ता चला गया। अगर धीरज धरा होता कोई बात नहीं, चलो एक फीट जमीन है कोई बात नहीं, आधा फीट जमीन है, 6 इंच जमीन कोई बात नहीं, हम धीरज धरेंगे। तो वो धीरज तो कह रहा है कि वो बुद्धिमानी मेरी और आपकी इस तरह से रक्षा करती है, सुरक्षा करती है कि वो मुझे और आपको वो समझ प्रदान करती है, वो ज्ञान प्रदान करती है कि ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में क्या निर्णय लूँ, कैसे निर्णय लूँ, वो निर्णय जो हमारे जीवन को संतुलित करके सही रीति से आगे चला सके, जिससे हम हानि ना उठाने पाए, जिससे हमारे अंदर हमारी शत्रुता ना बढ़ पाए, जिससे हमारा बैर ना बढ़ पाए, जिससे लड़ाई झगड़ा ना होने पाए और जिससे मेरी और दूसरी हानि ना होने पाए। सो वो कह रहा है और उसके साथ साथ कहता है बुद्धिमानी उत्तराधिकार के साथ अच्छी होती है। जो उत्तराधिकार मिलता है वो बुद्धिमानी का साथ और उसका उसको सही रीति संभाल के रखना और उसको ले चलना, ये भी एक बुद्धिमानी है। सो यहाँ पर बुद्धिमानी की बात करता है कि किस प्रकार से, अगर ये बात है तो ये कहना चाहता है कि बुद्धि परमेश्वर प्रदान करता है, बुद्धि सच्ची बुद्धि जो है परमेश्वर प्रदान करता है। इस स्थल के अनुसार हमें दो कार्य करने, पहला हमें परमेश्वर को खोजना है, दूसरा हमें परमेश्वर से मांगना है। हमें परमेश्वर से बुद्धि को खोजना है, प्रभु जी हमें वो बुद्धि दीजिए, अब मांगना है। अब मांगते समय क्या करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, हमें रोटी दे दीजिए, तनख्वाह दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, ये ठीक है मांगते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं मांगते जो हमें आसानी से नहीं मिलती है। कितना अधिक हम मांगते हैं कि प्रभु मुझे धैर्य का जीवन दे दीजिए, कितना अधिक मांगते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से क्रोध दूर हो जाए, कितना अधिक मांगते हैं प्रभु हमारे जीवन से, मेरे जीवन से लालच दूर हो जाए, संतुष्टि प्रदान कर दीजिए, कितना अधिक मांगते हैं कि प्रभु आपका वचन मैं समझ सकूँ, आपके वचन को पढ़ने की इच्छा मुझे दे दीजिए, कितना अधिक हम मांगते हैं। वो बातें जो स्वर्गीय बातें हैं, जो परमेश्वर के राज संबंधित है, जो परमेश्वर के जीवन संबंधित है, जो परमेश्वर के स्वभाव संबंधित, उनको हम कितना मांगते हैं, प्रभु मुझे मेरी सहायता कीजिए, मैं अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करूं, मैं अपनी बहन के साथ कैसा व्यवहार करूं, मैं अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करूं, मैं अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करूं, मैं अपने माता पिता के साथ व्यवहार कैसे करूं, मैं कलीसिया में भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार, मुझे वो बुद्धि दे दीजिए, वो समझ दीजिए, कितना दिखा मुझको इस तरह की चीज़ों मांग नहीं मांग कितना दिन मांगते हैं, प्रभु मुझे कलीसिया के लिए क्या करना चाहिए मुझे बता दीजिए, मुझे समझ दीजिए, मेरे को बुद्धि दीजिए, ताकि मेरा और भी कलीसिया के साथ योगदान बढ़ सके, है ना। प्रभु आपने मेरे लिए क्या है, मेरे लिए आपने लहू बहाया, मुझे बचा लिया, मुझे अपनी संतान बनाया, कलीसिया के सदस्य बनाया, अब मुझे और क्या करना, प्रभु आप मेरे साथ। इस तरह की चीज़ हम नहीं मांगते, प्रभु कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मांगते तो परंतु पाते नहीं, क्योंकि क्यों नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने भोग और विलास में अपनी इच्छाओं में उड़ाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता। तो परमेश्वर चाहता है कि हम मांगे उससे, लेकिन किस चीज़ को मांगना है, तो ये बुद्धि मांगनी है जिस बुद्धि से हमारी रक्षा हो सके, जिस बुद्धि से हमारा जीवन और अधिक संतुलित हो सके, जिस बुद्धि से हम और अधिक समझदारी से जीवन व्यतीत कर सकें और सचमुच में हम परमेश्वर सामने वो चीज़ प्राप्त कर सकें जो अच्छा है। वो कह रहा है किसी विषय का अंत उसके आरंभ से अधिक अच्छा है। और अगर अच्छी बुद्धि है तो हमने कोई चीज़ आरंभ करी है, उदाहरण के लिए आपने किसी कॉलेज में नाम लिखवाया, आप पहले दिन गए हैं, आपने नाम लिखाया, बहुत खुश है कि आपका नाम लिख गया, आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, डिग्री लेना चाह रहे हैं, आपने लिख दिया काम, लेकिन अभी आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ, अभी आपको डिग्री नहीं मिली, अभी तो आपने एडमिशन ही लिया है, अभी क्या करना है, कोर्स को पूरा करना है, शायद 3 साल का कोर्स है, 30 साल का। अब जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और जब कोर्स ख़त्म होगा तब वो आपके लिए और अच्छा होगा, जब डिग्री आपके हाथ में आएगी। डिग्री पहले नहीं आएगी, पहले केवल ठीक है आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन जब तक आपका पूरा कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आपके बेकार है। तो वो कह रहा है कि अंत उसके आरंभ से अधिक अच्छा होगा, किसी विषय का अंत। अब ये अंत आया कि आपने अपना कोर्स कर लिया, डिग्री आपके हाथ में आ गई, वो अच्छा है। आरंभ क्या था, आपने अपने रजिस्ट्रेशन कराया, नाम लिखवाया, अभी आप आगे बढ़े। सो लेकिन उस अच्छे को पहुंचने के लिए आपको जो साल व्यतीत करना पड़ा, जो परिश्रम व्यतीत करना पड़ा, जो अनुशासित करना पड़ा अपने आप को, जो खर्च करना अपना पड़ा, वो भी तो इन्वॉल्व है उसमें, तभी तो अच्छा हुआ है। आपने जैसे करा है वैसे मिला आपको। अगर मान लियो चार साल में आप कुछ ना करते, ना पढ़ाई करते, ना कुछ करते, तो आपका अंत कैसा होता? अच्छा नहीं होता। तब शायद आपको डिग्री उस तरह से नहीं मिलती जिसको देखकर आप खुश हो। सो प्रभु सहायता करें। अंतिम बात परमेश्वर की कह रहा, परमेश्वर के कार्य पर विचार कर, 13-14 पद, परमेश्वर के कार्य पर विचार कर, क्योंकि जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया है उसे कौन सीधा कर सकता है। अपने स्मृति के दिनों में आनंदित रहें, परंतु अपने विपत्ति के दिनों में विचार कर। परमेश्वर ने ही जैसे एक को बनाया वैसे ही दूसरे को भी बनाया, जिससे कि मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। ध्यान दीजिए, दो बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर के कार्य पर विचार कर। दूसरी बात, अपनी विपत्ति के दिनों में विचार कर। परमेश्वर के कार्य पर विचार कर, विपत्ति के दिनों पर विचार कर। जब विपत्ति के दिन आते हैं, कठिनाई के दिन आते, घटी के दिन आते हैं, समस्या के दिन आते हैं, बंदी के दिन आते हैं, विचार कर। सोच रहे हैं प्रभु क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा हुआ? और जब विचार करें तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, आप विचलित होने से बचेंगे, आप व्याकुल होने से बचेंगे। क्या हो रहा है उस समय में भी आप परमेश्वर पर निर्भर हो रहे हैं, चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना हो परमेश्वर पर निर्भर होना है। परमेश्वर के कार्य पर विचार कर, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किए हैं, उद्धार का कार्य किया, सबसे बढ़कर परमेश्वर ने आपके जीवन को पाप के दंड से निकाल करके अपने संतान बना करके अपने राज का वारिस बनाया और एक अनंत आशा दी है। उसने आपको बचाया, उसने आपको एक अनंत आशा दी कि आप उसके साथ उसके राज में राज करेंगे, उसके समान होंगे, ये उसने दिया। तो उसकी कार्य महान है, अद्भुत। लेकिन उसके अलावा भी परमेश्वर ने हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे में काम किए। हम तो नाश्वर थे, उसने बचा लिया, हमारे हाथ के कार्य पर उसने आशीष दी है। बहुत सारी चीज़ें आप सूची बना सकते हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ रहता है वही परमेश्वर के कार्य पर विचार कर सकता है। ठीक है, हमारी फसल खराब हो गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने भूखे नहीं मरने दिया, प्रभु ने सहायता की है कि जैसे भी हो। बहुत सारी चीज़ें हमें प्रतिदिन परमेश्वर के कार्य पर विचार करना है, कैसे वो अंश अंश करके लें। जब हम देखते हैं परमेश्वर कार्य को और विचार करते हैं, तब देखते हैं कैसी कठिन बात समय में परिस्थिति में प्रभु हमारा सहायक बन करके ले चल रहा है और हमारी अगुवाई कर रहा है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो अच्छा हमारा परमेश्वर है। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, उसने मुझे और आपको बनाया, उसने कहा संसार तुम्हें छोड़ देगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसके वचन मेरे और आपके साथ हैं, प्रतिज्ञा मेरे और आपके साथ हैं। क्यों ना हम उसके कार्य पर विचार करके उसका धन्यवाद करें। और इसी तरह से कहता है, वो कहता है कि ना केवल उसके कार्य पर, लेकिन वो कहता है अपने स्मृति के दिनों में आनंदित रहें, परंतु अपनी विपत्ति के दिनों में विचार कर। अगर विपत्ति आती है, प्रतिदिन हम कर रहे हैं लेकिन कठिनाई आई, समस्या आई, तब हमें प्रभु इसमें आप क्या सिखाना चाहते हैं, प्रभु इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, मेरे विश्वास से क्या संबंधित है, मेरे व्यक्तिगत जीवन संबंध क्या है। हाँ, मेरी हानि, मुझे तो हानि दिखाई दे रही है, मेरा नुकसान हो रहा है, शरीर का नुकसान हो रहा है, पैसा नुकसान हो रहा है, समय का नुकसान हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, हम तो ये देख रहे हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, आप बताइए आपकी इच्छा क्या है, आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, मेरे लिए आपकी क्या इच्छा है। तो हम परमेश्वर के मन को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ रहे हैं, हमारे विचार तो अलग है, यही बात है, यही सुलेमान समझा रहा है। सुलेमान वही समझा रहा है, जब तक वो पृथ्वी के बारे में सोच रहा था, पृथ्वी समझ में उसका सोचने का तरीका अलग था, अब वो परमेश्वर की निकटता में है और परमेश्वर की बुद्धि और समझ को लेकर के वो बातों कह रहा है कि जब परमेश्वर हमें बुद्धि देता है तो हमारी सोच बदल जाती है। और बार बार हम इन सातों बातों में हमने दो दो चीज़ों को देखा है, तो हमें विचार करना है कि किस तरीके से। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। तब वो कहता है, परमेश्वर ने जैसे एक को बनाया है वैसे ही दूसरे को बनाया है, जिससे कि मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। सुलेमान जब ये वचन लिखे हैं तो वही याद करता है, अपने पिता को याद करता है। आखिरी नीति वचन 4 अध्याय क्या कह रहा है, कह रहा है, हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा को सुनो। पुत्रों, सुलेमान कह रहा, पुत्रों पिता की शिक्षा को सुनो और प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उत्तम शिक्षा देता हूँ, मेरी शिक्षा को त्याग ना देना। 3 पद, जब मैं भी अपने पिता के सामने छोटा और अपनी माता की दृष्टि में अकेला दुलारा था, तब उसने, मेरे माता और मेरे पिता ने, उसने शिक्षा देकर कहा, मैं दोनों माता पिता को ले रहा है, उन दोनों ने मेरे को शिक्षा देकर क्या कहा, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, मेरी आज्ञाओं को पालन कर और जीवित रहे, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, मेरे मुंह के वचनों को ना भूल और ना ही उनसे विमुख रहे। बुद्धि का परित्याग ना करना, वो तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रेम रखना, वो तेरी चौकसी करेगी। बुद्धि का परित्याग ना करना, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, बुद्धि को का परित्याग ना करना, बुद्धि को मत त्यागना, वो तेरी रक्षा करेगी, वो तेरी सहायता करेगी। सुलेमान इस सातवें अध्याय में स्वर्गीय बुद्धि की बात कर रहा है। उस स्वर्गीय बुद्धि जब प्राप्त होगी तो किस प्रकार से मेरा और आपका जीवन होगा, कौन सी चीज़ हम अलग रखेंगे, कौन सी चीज़ को लेकर चलेंगे। प्रश्न यह है, क्या हम सच में परमेश्वर की बुद्धि की खोज में हैं या अपनी बुद्धि से सब काम कर रहे हैं? अब बुद्धि से हम धनवान बनना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से हम घर में सब कुछ जोड़ना चाहते हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा जाए। लेकिन अगर परमेश्वर की बुद्धि है तो हम परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के वचन के साथ सोचेंगे, औरों के बारे में सोचेंगे, अपने जीवन की साक्षी के बारे में सोचेंगे, अपने जीवन की गवाही के बारे में सोचेंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके परिणाम के बारे में सोचेंगे, और सोच करके हम सही निर्णय लेंगे। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम सच में सच्ची बुद्धि की खोजी हो सकें, प्रार्थना कर सकें और प्रभु से उस बुद्धि प्राप्त करें जो मेरे और आपके जीवन को सही रीति संचालित कर सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।